Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kenopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmananda Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
अप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिष्यत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सामवेदीय तलोकार शाखा की केनोपनिषद का हम लोग विचार कर रहे हैं। जीव का अज्ञान अवस्था में जीव जैसा स्वरूप समझ रहा है ऐसा वस्तुतः वह है नहीं, उसके वास्तविक स्वरूप का निरूपण केनोपनिषद कर रही है। इसलिए केनोपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है जीव का वास्तविक स्वरूप। और जीव अपने उस वास्तविक स्वरूप से इतना अज्ञान के कारण अलग हुआ है और दूसरों को तो जानना उसे बड़ा सरल प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जीव के पास जो ज्ञान के साधन के रूप में ईश्वर ने इंद्रियां दी है, उन इंद्रियों का स्वभाव शास्त्र बताता है कि आत्मा को ग्रहण करना ये उनका स्वभाव नहीं है, अपितु अनात्मा जो बाह्य वस्तु है उन्हीं को ग्रहण करना इंद्रियों का स्वभाव है। तो इंद्रियां जो ज्ञान के साधन के रूप से जीव के पास उपलब्ध है और इस अनादि संसार में अनादिकाल से असंख्य जन्मों में इन्हीं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करते करते विषय ग्रहण का इतना अधिक संस्कार पड़ा हुआ है बुद्धि में कि व्यक्ति को कितना भी कठिन से कठिन काम हो वो अभ्यास में आ जाए तो बड़ा सरल लगता है। तो असंख्य जन्मों से जीव शब्दादि विषयों का ग्रहण करने वाली श्रोत्रादि इंद्रियों से शब्दादि विषयों का ही ग्रहण करते करते शब्दादि विषयों को ग्रहण करना उसका अभ्यास बन गया है। बाह्य स्थूल पदार्थों को ग्रहण करने का अभ्यासु हुआ जो जीव है उसे जो अविषय है इंद्रियों का, यद्यपि उसका अपना स्वरूप ही है लेकिन उसको ग्रहण करने में महान कठिनाई सी अनुभव हो रही है। यही तो श्रुति कहती है कि परांचिखानी व्यतृणित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। जीव के पास जो ईश्वर ने ख शब्द से बताई गई इंद्रियां हैं, दी हैं ज्ञान के साधन के रूप से, वे बहिर्मुख हैं। इसलिए उन बहिर्मुख इंद्रियों के द्वारा बाह्य जो अनात्म वस्तुएं हैं रूपादि विषय, उन्हीं को यह जीव देखता है। और असंख्य जन्मों से अनात्म पदार्थों का ज्ञान श्रोत्रादि इंद्रियों से प्राप्त जीव कर रहा है लेकिन जो वो चाह रहा है दुखों की सर्वदा के लिए निवृत्ति और निरतिशय सुख की उपलब्धि वह नहीं हो पा रही है। इसका अर्थ है इंद्रियों से हम जिन पदार्थों को जान रहे हैं, जिनका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनके ज्ञान मात्र से हमारे अभिलषित, हमारे अपेक्षित दुखों की सर्वदा के लिए निवृत्ति तथा सुख की निरतिशय सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। और केनोपनिषद में ऐसे ही दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति तथा निरतिशय सुख की प्राप्ति करना चाहता है जो मुमुक्षु, उस मुमुक्षु ने ये स्वयं जान लिया है कि इंद्रिय ग्राह्य पदार्थों का ज्ञान हमारे उस दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति शब्दित मोक्ष को दिलाने में असमर्थ है। और किसी ये सारे इंद्रिय ग्राह्य जितने भी पदार्थ हैं वे सब के सब जड़ हैं और जड़ पदार्थों के ज्ञान से दुखों की निवृत्ति असंभव है। और वो जो दुखों की सर्वता के लिए निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति है वह नित्य सुख रूप होने के कारण शास्त्र ये भी बताता है कि नास्ति अकृतः कृतेन, किसी क्रिया से भी वो जो अकृत शब्दित नित्य सुख है उस नित्य सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। तो उसके लिए तो तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि श्रुतियों के अनुसार जड़ पदार्थों से विलक्षण समस्त जड़ पदार्थों को केवल अपनी सन्निधि मात्र से अपना अपना कार्य करने में समर्थ बनाने वाला जो चेतन है उसके ज्ञान से ही मुमुक्षु समझ रहा है कि हमारा अभिलषित जो नित्य सुख है वह उपलब्ध हो सकता है। इसलिए उसी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये प्रश्न हुआ कि केने शितम पतति प्रेषितम मनः, इस प्रथम मंत्र से कि बाह्य घटादि पदार्थों की तरह ही भौतिक होने के कारण जड़ जो मन है, जड़ जो प्राण है और जड़ जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं, लेकिन इनसे अपने अपने विषयों का ग्रहण रूप क्रिया होते हुए देखी जा रही है, तो निश्चित ही इनका, इन जड़ इंद्रियों का प्रेरक चेतन विद्यमान है और वह चेतन आत्मा है। लेकिन उसका क्या स्वरूप है? यद्यपि कोई भी अपने आप को जड़ नहीं समझता, चेतन रूप से आत्मा का ज्ञान सबको है, लेकिन वह अपने आप को जिस चेतन रूप समझ रहा है वो समझता है कि सविशेष चेतन, क्रिया करने वाला चेतन और सुख दुख का अनुभव करने वाला चेतन के रूप में अपने आप को जान रहा है, कर्ता भोक्ता के रूप में। लेकिन शास्त्र के अनुसार केवल कर्ता भोक्ता चेतन मैं हूं इत्याकारक मैं के ज्ञान से मैं शब्दित आत्मा को, जीव को समस्त दुखों से मुक्ति मिलना संभव नहीं है, और जिस सुख की वो प्राप्ति चाहता है वह सुख भी उपलब्ध होना संभव नहीं है, क्योंकि कर्ता भोक्ता रूप से तो ज्ञान आप हम सबको ही है, लेकिन तब भी अनुभव कर रहे हैं दुख का और नित्य सुख के प्राप्ति की अपेक्षा रख रहे हैं। इसका अर्थ है कि कर्ता भोक्ता रूप से मात्र जो मैं का ज्ञान है वह ज्ञान पर्याप्त नहीं है, भले ही चेतन के रूप में हम उसको जान रहे हैं, लेकिन सविशेष चेतन के रूप में हम अपने आप को जान रहे हैं कर्ता भोक्ता के रूप में, उतना ज्ञान पर्याप्त नहीं है। ये कर्ता भोक्ता शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के संपर्क से आत्मा प्रतीत हो रहा है, वस्तुतः वह आत्मा का कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूप नहीं है, इसे ही तो शास्त्र समझा रहा है। उसमें तो केवल प्रकाशकत्व है यानी ज्ञातृत्व मात्र है, वह सब जितनी भी दृश्य वस्तुएं हैं उनको देखता है, जानता है, और यहां प्रकाश भी सूर्य के प्रकाश के तरह या चंद्रमा के प्रकाश के तरह या अग्नि के प्रकाश के तरह प्रकाश उसका नहीं है, ये सब तो जड़ प्रकाश हैं, और इन जड़ प्रकाशों को भी जानने वाला जो एक चेतन प्रकाश होता है वह चेतन प्रकाश मात्र उसका स्वरूप है, और उसी चेतन प्रकाश में शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के संपर्क से अज्ञान के कारण ही कर्तापना और भोक्तापना प्रतीत हो रहा है, आरोपित हो रहा है, जैसे स्फटिक केवल शुक्ल रूप है, शुद्ध स्फटिक, उसमें लालिमा या पीलापन नीलापन नहीं है, लेकिन लाल पुष्प की सन्निधि से उसमें लालिमा का भी आरोप होता है, लाल स्फटिक प्रतीत होता है, लोहित स्फटिक ऐसी प्रतीति होती है। ऐसे ही कर्तापना भोक्तापना शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के सन्निधि में जिस चेतन में अज्ञान से ही प्रतीत हो रहा है वह चेतन अपनी सन्निधि मात्र से केवल उसे घटादि के दृश्य जो घटादि है उनको देखने वाला जो दृष्टा है व्यवहार अवस्था में अपने आप को जैसे इनसे अलग समझता है, ऐसे इन शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जिनके संपर्क से अपने आप में कर्तापना और भोक्तापना का आरोप जीव कर रहा है उसे घटादि के तरह अपना दृश्य के रूप में देख लें, अपने प्रेरक के रूप में देख लें, यानी इनसे अलग अपना जो एक स्वरूप है। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के बिना भी सुसुप्ति अवस्था में आत्मा रहती ही है और वहां पर भी एक अज्ञान है, लेकिन उस अज्ञान से भी अलग करके कारण शरीर से भी अपने आप को यदि चेतन देखता है तो वो जो चेतन है उस चेतन का ही यहां पर श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मनोयत इत्यादि शब्दों से आचार्य ने श्रोत्रादि के प्रेरक मन के प्रेरक आदि के रूप में वर्णन किया है और उसे ही अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, इससे ये बताया गया कि वो जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है वह विदित भी नहीं है। का मतलब विदित तो होता है ज्ञाता से भिन्न, जिसको ज्ञाता ने जान लिया है ऐसी वस्तु, और वह ज्ञान का विषय बनने वाली वस्तु ज्ञाता से अलग हुआ करती है। और आत्मा तो जानने वाला है, सब का ज्ञाता होने के कारण वह विदित से अलग है और अविदित भी नहीं है। अविदित कहते हैं अज्ञान के विषय को। आत्मा तो अज्ञान को ही प्रकाशित करने वाला है, अज्ञान को भी वह चेतन जान रहा है, इसलिए वह अज्ञात नहीं रहेगा। अज्ञान को प्रकाशित करने वाला उसे अविदित नहीं कहा जा सकता। तो वह विदित तथा अविदित से अलग है, इन शब्दों से एक प्रकार से आत्मा को स्वयं प्रकाश के रूप में बताया गया। और वो जो स्वयं प्रकाश आत्मा है उसे वो स्वयं ही भाषित हो रहा है, उसे जानने के लिए किसी भी दूसरे ज्ञाता की या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य को प्रकाशित करने के लिए किसी प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश स्वरूप सूर्य होने के कारण स्वयं ही प्रकाशित होता है, ऐसे स्वयं ही चिद्रूप होने के कारण आत्मा स्वयं ही भास रही है। और उस स्वयं भासमान आत्मा को कोई इंद्रिया अपना विषय भी नहीं बना सकती, अर्थात उस आत्मा का ज्ञान नहीं करा सकती। वह न तो इंद्रियों का विषय है, न तो शब्द का विषय है, वह शब्द का विषय है नहीं। इसे ही चतुर्थ मंत्र से बताते हुए श्रुति ने यह कहा था कि यद वाचा अनभ्युत्थितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। दूसरी श्रुति इसी मंत्र के अर्थ का अनुवाद करते हुए कहती है कि यतो वाचो निवर्तन्ते। तो जिसको शब्द अपने शक्ति संबंध का विषय नहीं बना पाता, अर्थात शब्द जिसका ज्ञान नहीं करा पाता, शब्द की शक्ति से उत्पन्न हुए ज्ञान का जो विषय नहीं बनता वह ब्रह्म है। यद वाचा अनभ्युद्यतम तद ब्रह्म। और येन वाग अभ्युद्यते, इससे बताया गया कि जो शब्द के द्वारा प्रकाशित होने वाले पदार्थ हैं, उन पदार्थों का प्रकाशन करने का सामर्थ्य शब्द के वाच्यार्थ को शब्द के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, जनाया जा रहा है। तो शब्द अपने वाच्यार्थ को जिसके सामर्थ्य प्राप्त करके बताता है वह चेतन आत्मा ब्रह्म है। और वह चेतन ब्रह्म शब्द से ज्ञात न होने वाला, शब्द को अपने अर्थ को जनाने की शक्ति प्रदान करने वाला ब्रह्म कोई तुमसे अलग नहीं है, अपितु तुम ही हो। तदेव ब्रह्मत्वम, इससे ये बताया आचार्य ने कि आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा से अलग ब्रह्म नहीं है, वो ज्ञाता है सबका। और जैसे शब्द से प्रकाशित नहीं होता, ऐसे पंचम मंत्र में ये बताया जा रहा है कि यन मनसान मनुते येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो शब्द भले ही आत्मा को न बता सके, शब्द से भले ही आत्मा का ज्ञान न हो, तो किसी ने कहा कि मन से उसका ज्ञान होगा, तो कहते हैं कि मन से भी, मन भी उसको अपना विषय नहीं बना पाता। यन मनसा न मनुते का मतलब स्वतंत्र मन से जिसको नहीं जाना जाता। यद्यपि मन को कहा जाता है कि समस्त ज्ञान का साधन, जितने भी पदार्थ हैं इंद्रिय गोचर या अन्य प्रमाणों से ज्ञात होने वाले, उन सभी प्रमाणों से उत्पन्न होने वाले ज्ञान में मन की आवश्यकता होती है। मन की वृत्ति तो प्रमाण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। यदि मन न हो, अंतकरण न हो, तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण किसमें अपने विषयों का ज्ञान कराएंगे, वृत्त्यात्मक ज्ञान। इसलिए यद्यपि मन सभी विषयों का होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान के प्रति साधन है, इसलिए मन का लक्षण करते हुए न्याय शास्त्र में ये बताया गया सर्व उपलब्धि हेतुर मनः, सभी उपलब्धि का यानी ज्ञान का जो हेतु हो उसे मन कहते हैं। लेकिन ऐसा जो मन है, बाह्य सभी अनात्म वस्तुओं को जानने का उसमें सामर्थ्य होने पर भी बिना किसी शास्त्रज्ञ ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा वेदांत का परम तात्पर्य विषय भूत ब्रह्म और आत्मा का जो एकत्व है, उसे उत्तम अधिकारी को लक्षित कराए बिना स्वतंत्र रूप से मन ये जो जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है उसे आत्म रूप से जानने में असमर्थ है। ये यहां पर यन मनसा न मनुते इस वाक्य से श्रुति बता रही है, नहीं तो अन्यत्र यद्यपि श्रुति ये कहती है कि मनसे व अनुद्रष्टव्यम, और यहां पर कह रही है कि यन मनसा न मनुते। इन दोनों श्रुति वचनों का आपस में विरोध सा प्रतीत हो रहा है आपाततः जब देखते हैं, तो कि श्रुति कह रही है कि मनसे व अनुद्रष्टव्यम, इसका अर्थ है कि मन से उसको जान सकते हैं, मन का वो विषय बन सकता है, और यहां पर श्रुति कह रही है कि यन मनसा न मनुते। तो यद्यपि शुरू शुरू में तो इन दोनों का, एक तो कह रही है कि मन से नहीं जाना जाता, एक कह रही है मन से जान सकते हैं, विरोध प्रतीत हो रहा है, लेकिन वहां पर भी यन क्या मनसे व अनुद्रष्टव्यम में थोड़ा सूक्ष्म रूप से विचार करते हैं तो ये बताया गया कि मनसा केवल द्रष्टव्यम नहीं कहा जा रहा है, मनसा अनुद्रष्टव्यम, और अनु का अर्थ होता है पश्चात, बाद में, किसके बाद में। तो जब जो शब्द से शक्ति के द्वारा नहीं बताया जाता, जो शब्द का वाच्यार्थ नहीं है, उपनिषदों के भी वाक्यों के शक्ति के द्वारा जिसको नहीं बताया जा सकता, लक्षणा से बताया जाता है, ऐसे आत्मा का जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उत्तम अधिकारी को उपलक्षणा से ज्ञान कराते हैं, लक्षणा से ज्ञान कराते हैं, तो उसके पश्चात वो जो मन है, आचार्य का उपदेश प्राप्त कर लिया है जिस मन ने, ऐसे मन से फिर जाना जाता है। केवल स्वतंत्र मन से नहीं जाना जा सकता, जब तक उस तत्व को एक तत्वनिष्ठ आचार्य लक्षित नहीं कराते। तो श्रुति कहती है कि अकेले मन से यह वो न मनुते, मन का विषय नहीं बन पाता। तो यन मनसा न मनुते और येन आहुर मनोमतम, अपितु ये स्वयं ही मन उससे जाना जा रहा है। येन आहुर मनोमतम का अर्थ, मतम का अर्थ है जाना गया, और हरे मन का प्रकाशक वह है चेतनात्मा। तो मन को प्रकाशित करने वाली आत्मा मन से नहीं जानी जाती। तो येन आहुर मनोमतम, मन जिससे प्रकाशित हो रहा है वह ब्रह्म है, तदेव ब्रह्म, और वह ब्रह्म तुम हो, जिसको तुम अपने से अलग समझ करके उपासना करते हो। वह ब्रह्म का औपाधिक स्वरूप भले ही होता है, लेकिन पारमार्थिक स्वरूप, तात्विक स्वरूप सबकी प्रत्येगात्मा है। इसलिए तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो जो तुम्हारे मन का भी ज्ञाता के रूप में, प्रत्येगात्मा के रूप में तुम्हारे अंदर विद्यमान है, वो ब्रह्म है। तो इससे ये बताया गया कि समस्त वस्तुओं का ज्ञान करने की शक्ति जिस मन में है, वह मन भी स्वतंत्र रूप से जिस चेतन को नहीं जान पाता, अपितु जिस चेतन से अपने में विद्यमान समस्त वस्तुओं के ज्ञान की शक्ति अर्जित करता है, वह चेतन आत्मा, चेतन ब्रह्म आत्मा है। इस प्रकार तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम एदिदम उपासते, इस पंचम मंत्र के द्वारा स्वतंत्र मन का अविषयत्व उस ब्रह्म में बताया गया, जिसे पहले ब्राह्मण भाग के द्वारा बताया गया था मनसो मनोयत। मनसो मनोयत यह ब्राह्मण वाक्य जो अर्थ बता रहा है उसी का संपोषण, उसी की संपुष्टि करने के लिए यन मनसान मनुते येन आहुर मनोमतम यह मंत्र है। और ये कहा था पूर्व में कि चक्षुसह चक्षु, वह चक्षु का भी चक्षु है। इसका अर्थ था कि चक्षु इंद्रिय को अपने विषय रूप तथा रूपवान द्रव्य का ज्ञान कराने की शक्ति जिस चेतन से मिल रही है वह चेतन आत्मा है, ऐसा चक्षुसह चक्षु इस ब्राह्मण वाक्य के द्वारा बताया था। उस वाक्य के ही अर्थ को पुष्ट करने के लिए, दृढ़ करने के लिए वाक्यार्थ को इस केनोपनिषद के प्रथम खंड का छठवां मंत्र है। इसमें यह बताया जा रहा है कि यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम एदिदम उपासते। इन चारों मंत्रों का, चार से लेकर के पांच मंत्र, इसमें चार से आठवें मंत्र तक, उत्तरार्ध तो सबका एक जैसा है,